परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में वंदना एक नूतन श्लोक के द्वारा कर रहा हूं, जो स्वरचित श्लोक है। श्री राम काम विरुधो हरते हितापम संसार सार करुणा कर दीननाथ। श्री संत राम चरणई करतिर्हि नित्यं दीनान प्रपन्न शरणान हि गतिस्त्वमेव। दीनान प्रपन्न शरणान हि गतिस्त्वमेव। राम स्वरूप भगवान जो होते हैं वह काम को नष्ट करते हैं। काम वह रिपु है मनुष्य का, जो उसे राम की तरफ नहीं जाने देता है, और जहां राम का नाम होता है वहां काम नहीं आता है, वासनाएं भटकती नहीं हो। इसके प्रमाण तुलसीदास जी लिखते हैं, जहां राम तह काम नहीं, जहां काम तह राम, तुलसी दोउन हो सके रवि रजनी एक ठाम। दिन और रात एक जगह नहीं रह सकते, उसी तरह से राम और काम एक जगह नहीं रह सकते। इसलिए श्लोक में लिखा कि काम विरोध हरते ही तापम, काम के विरोध होते हुए जो काम का ताप है, उन्मादन तापन शोषण स्तंभन ये सब का हरण करते हैं, इसलिए वो राम है। संसार सार करुणा कर दीन नाथ, जो दीनों के नाथ हैं, संसार रूपी सागर में जो दीन व्यक्ति बना हुआ है काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथ, उसने व्यक्ति को दीन बना दिया है। जाकर के वो भिक्षा मांगता है कि हमें, हमारे में ये दुर्गुण है, आप हमें भिक्षा दे करके हमारे दुर्गुण को नाश करो। वहां भक्त की दीनता बोधित होती है। फिर कहा श्री संत राम चरणई करतिर्हि नित्यम, वह राम का रामत्व उसमें संतत्व है, उसमें संत के धर्म है, मन वाणी और कर्म में एक है। इसलिए संत और राम जब दोनों जुट जाते हैं तो संत स्वरूप में मन वाणी और कर्म की एकता है, और राम स्वरूप में सारा जगत जाकर के जहां आराम करता है वह संत राम है, उसमें रति रखने वाले राम। दीनान प्रपन्न शरणान गतिस्त्वमेव, दीन और जो आपके शरण में आए हुए हैं उनके लिए आप ही गति हो, ऐसा इसका भावार्थ है। जब इस तरह के श्लोक पढ़े जाते हो उस समय साक्षात आकर के एक जीवात्मा जो योनि से तो श्वान योनि कहेंगे, शिष्ट भाषा में इनको भैरव वाहन बोलते हैं कि ये भैरव जी के वाहन हैं, इनमें बड़ी ही कृतज्ञता है। तो योनि बसात ये कुछ प्राचीन, कुछ इनका पूर्व जन्म का होता है, इसलिए ऐसे पवित्र स्थानों में जन्म लेते हैं। भगवान राम के प्रसंग के बाद भगवान श्री कृष्ण की बात आती है। भगवान श्री कृष्ण का जब प्रसंग चलता है तो बतलाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पुरी को द्वारिका को बनाया, ब्रज से द्वारिका को बनाया। कहा कि ब्रज मतलब क्या होता है? कहा ब्रज मतलब जहां गति होती है, ब्रज धातु है, ब्रज गतौ, और ब्रज में रह करके जिन्होंने विविध लीलाएं किया। ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम, ब्रज में रह करके मक्खन चोरी किया, गोपांगना नाम चदुकूल चौरम, और जो गोपांगनाएं हैं, गोपियां हैं, उनके वस्त्रों का हरण किया। क्या बात है, एक तरफ दुशासन भी वस्त्र हरण कर रहा है, एक तरफ भगवान वस्त्र हरण कर रहे हैं। कोई अज्ञानी जीव हो तो वह कहेगा कि ये तो सब एक जैसे दिखता है, लेकिन यहां वस्त्र का हरण आवरण अज्ञान का हरण है, क्योंकि वस्त्र से हम किसी चीज को ढक देते हैं तो वह अज्ञान है जो आत्म स्वरूप को ढक लेता है। जैसे हम सूर्य का दर्शन करना चाहते हैं और उस समय बादल आ जाता है और हम कहते हैं सूर्य को ढक लिया है। बादल सूर्य को नहीं ढकता, यदि सूर्य को ढकता तो रात हो जाती, जैसे ग्रहण में अंधेरा छा जाता है। बादल हमारे आंखों के और सूर्य के बीच में आ जाता है, इसलिए हम नहीं देख पाते, हमारी दृष्टि छोटी है, अन्यत्र तो धूप दिखाई देती है। तो वैसे ही जो आवरण है ना, जो पर्दा है, उस पर्दे को वो चुराने वाले हैं, हमारे स्वरूप को दर्शन करा देते हैं कि देखो तुम वास्तव में नंगे हो। इसलिए ये आवरण परमात्मा के सामने छल और कपट रूपी आवरण व्यक्ति का नहीं होना चाहिए, वहां जाकर के सत्य सत्य बोल देना चाहिए, क्योंकि वो भगवान है। गोपांगनानां चदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम। अब जब आवरण हट जाता है तो अनेक जन्मों के पाप को वह खत्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, जो चोरों में अग्रगण्य है, सबसे बड़े चोर हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण चंद को नमस्कार कर रहे हैं। कहा कैसे चोर हैं, तो कहा कि काली रात में पैदा होगा तो क्या साधु होगा क्या? चोरी से पैदा हुआ और चोरी से भाग गया और चोरी से ही सब काम करते हैं, ये कैसे चोर हैं? मक्खन की चोरी, वस्त्र की चोरी, अज्ञान की चोरी और राक्षसों के ज्ञान की भी चोरी। अज्ञान को तो चुराते ही हैं, जो दुर्जन है उनकी सद्बुद्धि को भी चुरा लेते हैं, और सद्बुद्धि को जब चुरा लेते हैं तो बुद्धिहीना विनश्यन्ति, जिसकी बुद्धि चली जाती है उसका सतत संहार ही होता है। विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपातः शतमुखः, जिस व्यक्ति की बुद्धि चली जाए उसका सब कुछ चला जाता है। हाँ जी, बुद्धिनाशात प्रणश्यति, हाँ, कामात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति भ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात प्रणश्यति, बुद्धि जहां चली गई कि उसके बाद गए। लेकिन जो नाश होता है, नाशम विधाय हि तदो दयते विवेकः, नाश के पीछे भी सर्वथा नाश नहीं रहता है, उसमें विवेक की उत्पत्ति होती है। जब व्यक्ति का नाश होता है तो वह चिंतन करता है कि हम किन दोषों के कारण मारे गए, तो वह पुनरुत्थान होता है, व्यक्ति का पुनरुत्थान होता है। जैसे हमारा यह पांच भौतिक शरीर पृथ्वी जल तेज वायु आकाश में विलीन हो जाता है, लेकिन आत्मा रहती है, वो आत्मा के द्वारा पुनर्जन्म हो जाता है। उसी तरह से जो विनाश है, महाभारत का विनाश भगवान श्री कृष्ण ने किया और बिना किसी प्रकार के बिना किसी अस्त्र और बिना किसी शस्त्र के भगवान श्री कृष्ण ने संहार कर डाला, अपने मधुर मुस्कान किया तो गोपियों को मोहित कर लिया, जिसके जिसके सामने मुस्कुराया उसको मोहित किया और इशारे से सबका खेल भी खत्म कर दिया। तो यह श्री कृष्ण की बुद्धि शक्ति का महात्म्य है। कारण क्या है कि वह परिस्थिति का आकलन कर लिया है कि अभी की परिस्थिति क्या है और किसकी कमी कहाँ है, उस कमी को पकड़ते हैं अंधेरी रात में। जैसे अंधेरी रात में गुप्तचर लोग घूमते रहते हैं और पता करते हैं कि अमुक सामने वाले व्यक्ति की कमजोरी क्या है, और जहां उसकी कमजोरी उसको दबाएंगे तो फट वो जो भेद होगा वो कह देगा। तो इसलिए वो कमजोरी को जान करके शत्रु पर कुठाराघात करते हैं, इसके कारण जो शत्रु है वो मुट्ठी में आ जाते हैं। यह बुद्धिबल हुआ और इस बुद्धिबल के लिए वो मक्खन खाते थे, दूध नहीं पीते थे, दही नहीं पीते थे, दही से निकला जो मक्खन था ना, वो सार है दूध का, उसको खाते थे। इसलिए सारांश ग्रहण करने की बात है। अब हमारे यहाँ पुराणों में तो कह दिया कि बस परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम, दो बातों में बात खत्म कर दिया, और ये लीला कहना हो तो कई वर्षों तक चल सकती है। जैसे हमारे जीवन में कभी स्टेशन नहीं आते हैं क्योंकि हमें पता नहीं कि कहाँ जाना है, हम जहाँ हैं वही हमारा स्थल है, लेकिन हम सांसारिक आनंद के चक्कर में घूमते हैं चारों तरफ और एक दूसरे स्टेशन आते हैं, लेकिन हमें जहां रुकना है हमें पता नहीं है। कैसे? तो कहा कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। जैसे मृग होता है उसके नाभि में ही कस्तूरी होती है, लेकिन जब हवा उधर से आती है तो उस हवा का सुगंध उसे लगता है तो सोचता है कहां से गंध आ रही है और चारों तरफ पागल होकर के घूमता है। जो सांसारिक प्राणी है उसको घुमाने के लिए व्यास जी ने ये जो लिखा, इन पुराणों की रचना की, इन पुराणों में अपने चरित्रों को ढूंढने की बात कहा कि ये जितने भी चरित्र हैं, इन चरित्र में हम कहाँ हैं, हमारी गति कहाँ है, ये हमें ढूंढना चाहिए कि राम के अंश हम में कितने दिखाई देते हैं और कृष्ण के जो चरित्र हैं वो हम में कितने दिखाई देते हैं और कंस का चरित्र हमारे में कहाँ है और रावण का चरित्र हम में कहाँ है। हमने 24 घंटे में जो कर्म किए उसका आत्म निरीक्षण करना चाहिए शयन काल में। ये देवताओं का जो चरित्र है, प्रभु प्रभु की जो लीला है, वह हमें यही शिक्षा देती है कि हम जो दिन भर करते हैं उस करने में हम में राम का गुणधर्म कितना है और कृष्ण का गुणधर्म कितना है। का ये जो भगवान है ना, ये कई नामों से कई अवतारों में पूजित होते हैं, लेकिन इन्हें हम भगवान क्यों कहते हैं? वेदांत तो यह कहता है कि तदसि त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, वह जो भगवान है वह तुम भी हो और मैं भी हूं और हम ब्रह्म के ही स्वरूप हैं, तो फिर हम जीव कैसे हो गए? ऐसा कौन सा पाप किया कि हम जीव कहलाते हैं? कहते हैं हम में धर्म नहीं है इसलिए हम पशु हैं। धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। धर्म को यदि केंद्रभूत करके हम चलेंगे, धर्म का हम पालन करेंगे, धर्म मतलब आचरण, जो वेद इत्यादि पुराण आदि शास्त्र कहते हैं परपीडन परपीड़ा सब नहीं अधमाई, परहित सरिष धर्म नहीं भाई। यही जो परहित है ना, परहित बस जिनके मन माही, तिनके जग दुर्लभ क चुनाही। यदि आपके मन में दूसरे का हित बसता है तो आपको कुछ भी दुर्लभ नहीं है, क्योंकि जो पर है वही अपना है। जिसको आपने पर को पर के हित के हिसाब से उसको देखा तो आपका अपना हो जाएगा। जिसको आप समर्पित हो जाओगे वो आपको समर्पित हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए वो समझेगा कि ये बेवकूफ है क्योंकि अपना समय दे करके और हमारा काम कर रहा है, और उसका जब समय आएगा तो आपको समय अपना नहीं देगा और लोगों से कहेगा, चार लोगों से, कि देखो हम होशियार हैं, उसको हमने ठग दिया। लेकिन तूने ठगा नहीं, तूने जो दूसरे को कहा, तेरा चरित्र कोई न कोई देख रहा है, फिर तेरे पास कोई दूसरे नहीं आएंगे कि ये ठगेड़ा है, इसके पास नहीं जाना, स्वार्थी है। तो वहां पर हितता बाधित होती है। इसलिए जो परहित है ना, उसमें जो सामने वाले का हित हमेशा चिंतन करोगे आप, एक व्यक्ति देख लेगा कि नहीं इसने दूसरे का हित किया है, तो आपके पीछे पीछे तीन चार लोग चले आएंगे और आपकी मैत्री सबसे बनी रहेगी।